ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ. ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ. ಜಸುದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಜಸುದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಜಮುನಾ ತಿರವನಾಚಾರಿ ಜಮುನಾ ತಿರವನಾಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ್ ಭಕ್ತವೃಂದ.
ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಆಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತ್ ಅಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಇಸ್ಕನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ నిత్రిడా ప్రవిష్ట జయం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టోత్తర శతశ్రీ శ్రీమత్ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజ్ ప్రభుపాదకి అనంతకోటి వైష్ణవ భక్త బృందకి నామాచార్య శిలహరిదాస్ ఠాకుర్కి ప్రేమ సుఖహో శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌరభక్త బృందకి శ్రీ 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 రాధా కృష్ణ గోప గోపినాథ్ శ్రీ రాధాకుండ శ్యామ్ కుండ శిగిరిరాజ్ గోవర్ధన్జీ మహారాజ్ కి జయ శ్రీ శ్రీ వ్రజ బృందావన ధామకి శ్రీ నవదీప్ మాయాపుర ధామకి శ్రీక్షేత్ర శ్రీ పురుషోత్తమ ధామకి శ్రీ జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రా సుదర్శన్కి శ్రీ ద్వారికాధామకి శ్రీ భద్రికాధామకి శ్రీ అయోధ్యాధామకి గంగాదేవి జమునాదేవికి బృందాదేవి తులసి మహారాణికి జుగధర్మశ్రీ హరినామ సంకీర్తనకి సమవేత భక్త బృందకి గ్రంథరాశ్రీమద్భాగవత మహాపురాణకి నితాయ గౌరహరి ప్రేమానందే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. శ్రీమద్ భాగవత్ మహాపురాణ సే పాఠ సప్తమ స్కంద నవమ అధ్యాయ శ్లోక సంఖ్య 11. నైవాత్మనః ప్రభురయం నిజలాభపూర్ణో మానం జనాద విదుషః కరుణో బృణీతే యజ్జజ్జనో భగవతే విదధీతమానం తచ్చాత్మనే ప్రతిముఖస్య యథా ముఖశ్రీ. నైవాత్మనః ప్రభురయం నిజలాభపూర్ణో మానం జనాద విదుషః కరుణో బృణీతే యజ్జజ్జనో భగవతే విదధీతమానం తచ్చాత్మనే ప్రతిముఖస్య యథా ముఖశ్రీ. శబ్దార్థ నా నాతో ఏవ నిశ్చయి ఆత్మనః ఆప్న నిజీ లాభ కే లియే ప్రభు అయం యహ ప్రభు నిజ లాభపూర్ణ సదైవ ఆప్న మే తుష్ట రహతే హై అన్య కి సేవా కా కోయి ఆవశ్యకతా నహీ మానం ఆదర్ జనాద్ వ్యక్తి సే అవిదుషః యహ జో నహీ జానతా కి జీవన్ కే లక్ష్య పరమేశ్వర్ కో ప్రసన్న కర్నా హై. కరుణః కృపాపూర్ణ వృణితే స్వీకార్ కర్తే హై జత్ జత్ जो जो जनः व्यक्ति भगवते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर विदधित अर्पित करें मानम पूजा तच्च वह निसंदेह आत्मने आपने लाभ के लिए प्रतिमुखस्य प्रतिबिंब जथा मुखश्री जिसके मुंह के सौंदर्य। अनुवाद एवं तात्पर्य, अनुवाद पढ़ते हैं क्योंकि दो श्लोक है, उसके श्लोक भी अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। पहले वैसे पढ़ते हैं, अब पता हम दो दो श्लोक लेते हैं। ग्यारह नंबर मतलब 10-11 है, आवृत्ति किए केवल 11 को। तो 10 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, काल जैसे कहते हैं मन्या धनाजी श्रुत ओजम, तो 10 नंबर में कहते हैं विप्रा दिषण गुण युक्ता अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचंग वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचनो हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं नतु भूरिमानः। अनुवाद, यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं जो सनत सुजात ग्रंथ में लिखित है, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमल से विमुख है, तो वह उस चंडाल भक्त से भी अधम है जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र करता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथा कथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। जो दूषण गुण है, ये काल के श्लोक जो धन जना आदि था वो भी 12 गुण है, और वो सुजात संहिता में जो बताया गया वो है धर्म सत्य भाषण, धर्म का पालन सत्य के भाषण, तपस्या द्वारा इंद्रिय निग्रह, ईर्ष्या से रहित होना, बुद्धिमान होना, सहिष्णु होना, शत्रु न बनाना, यज्ञ करना, दान देना, स्थिर रहना, वेदाध्ययन में पारंगत होना तथा व्रत आदि पालन करना, ये 12 गुण से युक्त ब्राह्मण दिशाधिपति। तात्पर्य, यह एक भक्त तथा कर्मकांडी ब्राह्मण का अंतर बताने वाला कथन 12 महाजनों में से एक महाजन प्रहलाद महाराज कहते हैं। मानव समाज 4 वर्ण तथा 4 आश्रम में विभक्त है, किंतु प्रमुख सिद्धांत उच्च कोटि का शुद्ध भक्त बनना है। हरिभक्ति शुद्धोदय में कहा गया है, भगवत भक्त ही नस्य जाति ही शास्त्रं जप तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनं लोकरंजनम्। यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य जैसे उच्च कुल में उत्पन्न होता है, किंतु यदि वह भगवत भक्त नहीं है, तो उसके ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य के सारे गुण व्यर्थ है। दरअसल ये सबके अलंकरण जैसे माने गए हैं। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज विप्रो अर्थात विद्वान ब्राह्मण की बात करते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में विप्र को श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु अधम चंडाल परिवार में जन्मा भक्त ऐसे विप्र से श्रेष्ठ होते हैं। क्षत्रिय वैश्य इत्यादि की तो बात ही नहीं उठती, भक्त अन्य सब की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह ब्रह्म स्तर पर सदैव दिव्य पद पर रहता है। मांग च यो यव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में चित नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। सनत सुजान पुस्तक में प्रथम कोटि के ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए हैं, ये हम बोल दिए। ज्ञानम च सत्यम च दमम च श्रुतम च आत्मस्य आत्मसर्जं श्री स्थितिख्यानुषया यज्ञश्च दानंच द्वितीय समस्य महाव्रता द्वादश ब्राह्मणस्य। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यूरोपीय तथा अमेरिकी भक्तों को भी कभी कभी ब्राह्मण मान लिया जाता है, किंतु तथाकथित ब्राह्मण जाति के लोग उनसे अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं। ऐसी ईर्ष्या के उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अपने प्रतिष्ठित पद का मिथ्या गर्व करता है, वह स्वयं को भी शुद्ध नहीं कर पाता, परिवार की तो बात ही नहीं उठती। किंतु यदि निम्न कुल में उत्पन्न चंडाल भक्त हो और भगवान की चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हो, तो वह अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर सकता है। हमें इसका वास्तविक अनुभव है कि किस तरह अमेरिकी तथा यूरोपियों ने कृष्ण भावना भावित होकर अपने समुच्चय परिवार को शुद्ध कर दिया है। यहाँ तक कि जब एक भक्त की माता मरने लगी तो उसने अपने अंतिम श्वास छोड़ते समय कृष्ण के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। अतएव यह सैद्धांतिक रूप से सही है तथा व्यावहारिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि भक्त अपने परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। मूर्ख लोग भक्तों को पलायमानवाद के सिद्धांतों का पालन करने का दोषी ठहराते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भक्त ही अपने परिवार को उठाने वाला सही व्यक्ति होता है। भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है, अतएव वह सदैव बढ़ा चढ़ा उन्नत व्यक्ति है। उसके बाद में ये श्लोक कहते हैं, नैवात्मनंग प्रभुरयं जलावपूर्णो मानंग जनादि अविदुषा करुणो वृणीते यज्जज्जनो भगवते विदधीतमानंग तच्चात्मने प्रतिमुखस्य जथामुखश्री। परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ के लिए ही होता है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ यदि किसी का मुख सुसज्जित हो तो दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सुसज्जित दिखता है। भक्ति योग में भक्तों को 9 सिद्धांतों का पालन करना होता है, श्रवण कीर्तन आदि। ये श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भगवान के जसोगान भगवान के लाभ के लिए नहीं है, यह भक्त के लाभ के लिए है। भगवान तो सदैव महिमामान है, चाहे भक्त महिमागान करे या ना करे, किंतु यदि भक्त भगवान का महिमागान करता है तो स्वयं भक्त ही स्वतः यशस्वी बनता है। चेतु दर्पण मार्जनम, भगवान का निरंतर जसोगान करते रहने से जीव का अंतकरण शुद्ध हो जाता है, जिससे वह समझ सकता है कि वह संसारी नहीं है अपितु आत्मा है, जिसका वास्तविक कार्य कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाना है, जिससे वह भवबंधन से छूट सके। इस प्रकार संसार की प्रज्वलित अग्नि तुरंत समित हो जाता है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। मूर्ख व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है जब कृष्ण आदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्म के कार्यकलाप को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तो कुछ मूर्ख पंडित यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे मांग करना तो अति है, किंतु यह मांग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लाभ के निमित्त नहीं, यह तो मानव समाज के कल्याण के लिए है। यदि सारे मनुष्य व्यष्टि रूप से यथा समष्टि रूप से प्रत्येक वस्तु को कृष्ण भावनामृत में रखकर भगवान की सेवा करें तो इससे सारा मानव समाज लाभान्वित होगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु समर्पित नहीं करता उसे इस श्लोक में अविदुषा या धूर्त कहा गया है। भगवद गीता में भगवान भी इसी प्रकार कहते हैं, न मांग दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया अपहृत ज्ञान आसुरंग भवाश्रिता। ऐते दुष्कृति लोग नितांत मूर्ख है, मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा अपहृत हो चुका है, और जो असुरों की भांति नास्तिक स्वभाव के है वे मेरी शरण में नहीं आते। अज्ञान तथा दुर्भाग्य के कारण नास्तिक तथा नराधम लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं जाते, इसीलिए परमेश्वर कृष्ण स्वयं पूर्ण होकर भी विभिन्न युग में बद्ध जीव से यही चाहते हैं कि उनके शरणागत हो लें, जिससे वे भवबंधन से मुक्त हो सके। निष्कर्ष यह है कि हम जितना भी अधिक कृष्ण भक्ति में लगते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, उतना ही अधिक लाभ उठाते हैं। कृष्ण को हमसे किसी प्रकार की सेवा नहीं चाहिए। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोहिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रहलाद महाराज काला परिस्थिति समझ चुके थे, अभी भी आपने स्तुति जारी रखे हैं। तो आज कहते हैं काल जैसे कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि कोई स्तुति स्तब के द्वारा आप प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी फेल हो गए ये सब करके, और कोई धन जान जोग तेज बाढ़ प्रभाव आदि जो काल सब गिन करके वारा गुण बताते तो बोले इसके द्वारा भी नहीं, इस सब में ये सब एक्सपर्ट हैं, माने नहीं, बल्कि केवल भक्ति से आप प्रसन्न होते हैं। प्रमाण गजराज का दिए थे। आज कहते हैं विप्रा दिषण गुण जित अरविंद नाभात। अरे काल तो बारह गुण बताते, बोले काल में पब्लिक के लिए बोला था, ऐसे ऐसे कोई भी पब्लिक बारह गुण में लेकर, लेकिन आज मैं खास ब्राह्मण के लिए बोलता हूँ, इसीलिए शुरू किए शब्द से विप्रा। बोले विप्र, विप्र माने हाँ कोई जेन्यू लेते हैं, कोई आजकल लेते भी नहीं, केवल नाम भले शर्मा हरमा कुछ लगाते हैं। तो बोलते नहीं, जो सचमुच ब्राह्मण है जाति कूल में और बिल्कुल बारह गुण से मंडित है, जो सुजात संहिता है बारह गुण बता गया है, और जो धन जन आदि जोग आदि तेज बड़ ओज आदि काल बताया गया था, चाहे ओहो चाहे ओहो, ज्ञानम च सत्यम च दमंग श्रुतंग च, ये सब जो बारह गुण है, ये सारे बारह गुण में भी गुणवान विप्र अगर पादार अविंद विमुखात, अगर अरविंद नाभ, अरविंद नाभ भगवान को कहा गया, पद्मनाभ, पद्मनाभ के चरण कमल के प्रति भक्तिभाव नहीं है, उससे विमुख है, भगवत विमुख है, लेकिन है ब्राह्मण, सारे बारह गुण उनको सत्य दम शौच यज्ञ निष्ठा सब कुछ उनके पास है, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है। बाकी समाज में बड़ा प्रतिष्ठित, खूब उनके पूजा करते हैं, लोक मान सम्मान करते हैं, लेकिन भक्त नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं उनसे ऐसे बारह गुण विशेष ब्राह्मण से कुक्कुर भोजी स्वपचंग स्वान पचती स, स्वान मतलब कुत्ता, दूसरे को छोड़ो कुत्ते को मांस के खाने वाले चंडाल भी उनसे वरिष्ठ है। किसी चंडाल वरिष्ठ नहीं, वो अगर चंडाल अगर ऐसा हो कैसा न मन्ने तद अर्पित मनो वचन हितार्थ, ये मन वचन आदि भगवान के प्रति जो समर्पित अर्पित किया है वो उनसे वरिष्ठ है। क्यों वरिष्ठ, न प्राणं पुनाति सकुलं नतु भूरिमानः, वो तो आपने आपको आपने कुल परिवार को उद्धार कर डालता है, और बल्कि ये जो ब्राह्मण है समाज में बड़े श्रेष्ठ प्रतिष्ठित है, वो तो आपने आपको उद्धार नहीं कर पाते, दूसरों क्या करें, इसलिए बोलता हूं। तो इसमें आचार्य लोग कहते हैं क्योंकि प्रहलाद महाराज सोचे कि बोले कि चलो भाई ये सब है, लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। आजकल तो पहले ज़माना तो और था, आजकल फिर भी लोग हैं, हम पंडित थे क्या समझ रहे हैं, अपने को बड़े मानते हैं। तो प्रहलाद महाराज खुल करके उन बात को कहते हैं कि पंडित हो तो क्या हो गया, और पंडिताई का सारे गुण भी हो, ऐसा बात नहीं। आजकल तो केवल 2 रुपये के धागा डाल करके दही चूड़ा खाने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बोले वो गुण नहीं, ये अवगुण बाकायदा सारे गुण हो, सत्य दम तप शौच तितिक्षा आदि सारे गुण होने पर भी अगर तो भगवत चरण कमल से विमुख है तो चन्नाड़ से भी निम्न है, गिरे हुए हैं। बोले चन्नाड़ से निम्न है, और बाकी क्षेत्रीय वैश्यों का तो बात ही क्या सोचे, उनका तो नाम ही उड़ गया। अरे जो ब्राह्मण से सबसे टॉप से गिने उनको तो बात ही नहीं उठता। बोले बाकी ब्राह्मण, बोले बाकी ब्राह्मण जो 12 गुण जिनके पास नहीं, 10 हैं, 8 हैं, 7, 4, 5, 3, 1 कुछ तो गुण है, बोले उनका बात भी नहीं, उनसे तो अतिशय वरिष्ठ है इस चन्नाड़ ने। बोले क्यों, उनका पास एक ही गुण है, क्योंकि भगवत समर्पण है उनका पास, और बाकी कुछ नहीं है। समाज में उसको सब कुछ ही देखते हैं, चन्नाड़ है, ऐसे ऐसे करते हैं, भले उसको चन्नाड़ बोल करके सभी लोग समाज में प्रतिष्ठा ना हो, कोई बड़े बड़े लोग उनको नहीं माने, भूरी मान प्रशंसा आदि ना दे, लेकिन मैं मानता हूं कि वो तो उनसे कई गुना श्रेष्ठ है। ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र तो बात ही छोड़ो, 12 गुण वाले ब्राह्मण से भी वरिष्ठ है। बोले क्यों ऐसा कहते हैं ना, ये प्रमाण है, क्योंकि ऐसे चन्नाड़ जो भगवान के प्रति अर्पित है, वो तो आपने को उद्धार करता ही है, आपने के साथ साथ जो जो उनके स्वजन परिजन है उनको भी उस समुच्चा उद्धार कर डालता है, और उसके अलावा ये सारे द्वादश गुणयुक्त ब्राह्मण वो आपने आप को सुधार नहीं पाता, उद्धार के बाद क्या कहें, और दूसरे की तो बात ही क्या कहें, किसी को नहीं उतार सकता, आपने खुद को ही सुधार नहीं सकता। श्रीधर स्वामी तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण भगवत भक्त नहीं है वो उनके पास बहुत सारे गुण है, बोलते गुण उल्टी काम करेगा उसका, क्या करेगा, उसका अहंकार बुद्धि करेगा। हाँ, बोले जो खतरनाक सांप होता है उसको विटामिन खिलाओ, दूध पिलाओ, तो क्या होगा, आपका पेट बनेगा, उसका विष वृद्धि होगा और आपको ही काटेगा। हाँ, यही करेगा। बोले इस प्रकार जिनके पास भगवत भक्ति नहीं है, कितने भी अच्छा गुण क्यों ना हो, वो उनके गर्व अहंकार मिथ्या अहमान को केवल पोषण करेगा, बढ़ाएगा। और जिनके पास भक्त भक्ति होता है वो तो नम्रता, वो तो नीचता वो अपना पाएगा, क्योंकि भक्ति का ही संपत्ति है। और बोलते हैं कि चंडाल को इतनी बड़ाई क्यों कहते हैं ना, चंडाल के विशेषण भी तो दिया ना, क्या न अन्य तदर्पित मनोवचन हितार्थ। चक्रवर्तीदास कहते हैं कि ये कह करके प्रहलाद महाराज सिंह, जो चंडाल तद अर्पित भगवान की अरविंद नाभ के चरण में अर्पण किया है, क्या क्या अर्पण किया है, न मन, मन अर्पण के मतलब भगवान की चरण के अलावा और कोई मन में चिंतन नहीं है, उनके अतिरिक्त भगवान के अतिरिक्त और कोई मन में चिंता नहीं लाएगा, केवल उन्हीं की चिंतन करेगा, इसको बोलते अर्पित चिंता। मना वचनों, वचन कैसे अर्पित, ना जो भी वचन कहता है केवल भगवान की वार्ता ही कहेगा, भगवत कथा नहीं तो उनके अलावा और किसी का बात नहीं कहेगा, इसी कहते हैं उनको वचन को उनको अर्पित कर दिया। और हितार्थ मैंने विभिन्न प्रकार के शारीरिक चेष्टा, इंद्रिय की चेष्टा, जो नाना प्रकार के कर्म आदि करता है, वो भी केवल तद प्रत्यार्थ है, न कि स्वार्थार्थ है, आपने लिए कुछ नहीं करेगा, कि आपने कोई निजन परिजन के, आपने केवल भगवत प्रसन्नता करते जो करता, नाना प्रकार की चेष्टा केवल उनके अर्थ करता, प्राण ओ प्राण पुनाति, ओ आपने कुछ समझ से पवित्र कर डालता है, उद्धार कर डालता है, और जो जो उनके कनेक्शन में आएगा सबको पवित्र उद्धार कर देता है, न तो भूरिमान। और उनसे अलावा जो समाज में बहुत प्रशंसा पाने वाले बड़े मोटे छोटे ब्राह्मण है, वो तो कोई वो आपने कोई उद्धार नहीं कर सकते। तो इस बात को प्रभुपाद जी ने उसके तात्पर्य में आपने अभिज्ञता एक सत्य घटना बताते हैं। बोले मैं तो इसी वचन के आधार पर प्रहलाद महाराज की शिक्षा के आधार पर विदेश में जाकर के प्रचार किया और अमेरिकी यूरोपीय जो मनुष्य हैं वो जब भगवत अरविंद नाम के भक्ति किए, भक्ति के नियम को पालन किए और उन्हीं के प्रति अर्पित हुए तो मैं उनको ब्राह्मण दिखा दिया, ब्राह्मण बनाया। तो हमारे भारत में बड़े बड़े पंडित उनको ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे भी, और उनको प्रभुपाद बोलते मुझे भी क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या कर दिया, और उनको आज भी करते हैं बड़े बड़े आचार्य। बोले प्रहलाद महाराज उनको पूरे पूरी इस बात को खंडन करते हैं, बोले ऐसे हो ही नहीं सकता, बल्कि आप ही ऐसा अहंकारी है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि देखा गया है सत्य घटना है, कोई अमेरिकन भक्त जो भक्त हो गया था, घर परिवार छोड़कर आ चुका था, लेकिन उनके माँ मरते समय में उनके चिंता किया और भगवान को चिंतन किया, अंतिम श्वास छोड़ते समय कृष्ण के बारे में पूछा, कृष्ण चिंतन किया, यद्यपि भक्त नहीं थे लेकिन बेटा के चलते उन्हें भगवान को याद किया। बोलते सारे शास्त्रों का निचोड़ ये अंते नारायण स्मृति। बोले वो बड़े बड़े पंडितों का होता ही नहीं, वो तो आजकल घर में नहीं तो हॉस्पिटल में मरेंगे और कम से कम 36 सलाइन लगा कर मरेंगे, लेकिन ये स्मृति नहीं होता कभी। लेकिन बल्कि उनका कोई भक्ति नहीं था, क्योंकि उनके परिवार में एक अर्पित भक्त हो गया तो उनका भी मरते समय भगवत स्मृति आ जाता है। एक सत्य घटना हुआ था जब प्रभुपाद जी ने वृंदावन में थे, ये लगभग 76 का बात है। जब तभी जमाने में तो 75 में तो मंदिर ही बना, कृष्णवरा मंदिर। अब इधर उधर से पकड़ करके प्रभुपाद ने जो थोड़े बहुत विदेशी शिष्य थे उनको पकड़ करके आरती घुमाना, उसे कुछ नहीं आता था, ना चूल्हा लगाना आता था, ना भोग बनाना आता था, ना कुछ नहीं आता था, बेचारे कुछ नहीं जानते, पकड़ करके चिड़ियाखाने से लाए सिखाए उनको। वो तो उनको प्रभुपाद जी बोले नीचे बैठ कर खाए। बोले क्यों? बोले हमारा घर में नीचे तो केवल डग बैठ कर खाता है, कुत्ता नीचे बैठता, हम लोग छोटे डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, हम किसे नीचे बैठे? बोले हम सब कुत्ते हैं, हम कुत्ते बन गए, हाँ सब कुत्ते बनना पड़ेगा, सब नीचे बैठ कर खाएंगे। हाँ बेचारा के प्रभुपाद जी को मानते थे इसे कुत्ता बनना पड़ा, नीचे बैठ कर खाने को कुत्ता बनना मानते थे, क्योंकि विदेश में सब डाइनिंग टेबल नीचे बैठ कर खाते नहीं, मन ये कहते हैं कि जो डाइनिंग टेबल बैठकर खाना है कुत्ता सभ्यता है, ये सभ्यता है। तो जो भी हो, तो इस प्रकार से उनको सिखाना, हाथ धोना कुछ भी नहीं बात था, सूची का कुछ नहीं ज्ञान था, कितने प्रभुपाद जी ने सिखाएंगे उनको। और वृंदावन में प्रतिष्ठित विग्रह की सेवा करना, हाय हाय उन लोग को लगा दिए। तो मरकट हस्ते सालग्राम, एक बंदर का हाथ में सालग्राम दो तो क्या सेवा करेगा वो। प्रभुपाद जी ने तो परेशान थे, कहां से जो भी इंडियन पकड़ रहा था उसको लगा रहे थे, भाई तुम जाओ कैसे कोई भी आ गया इमीडिएट आज ही दिखा दे, आज ही लगा दे पुजारी सेवा सीधा, हाँ जी वो जानते ही तो कुछ ना कुछ तो करेगा, और ये तो कुछ ही नहीं करेगा, उल्टा पुल्टा सब क्या कर डालेगा, संस्कार नहीं। वो प्रभुपाद जी जानते थे सिखा ही नहीं सकते थे, इतना कम समय में सिखा नहीं सकते थे, मंदिर घटना कोई उनको प्रस्थान, तो इसलिए जो जो पकड़ के देते थे तो बराबर उनको सिखा दे, समझाते थे ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। तो क्योंकि मंदिर होने से पहले जो प्रभुपाद जी के जो विदेशी शिष्य उनके साथ रहते थे, प्रभुपाद जी तभी राधा दामोदर में रहते थे, तो उनके पास राधा दामोदर तो एक ही 5 रुपया किराया में प्रभुपाद जी रुकते, छोटा सा कमरा था, छोटा सा, बाकी लोग आते थे वहाँ तो कुछ कंस्ट्रक्शन था नहीं, कुछ था नहीं हमारा, तो किसी घाट के पास एक धर्मशाला में रेंट लेकर वहाँ सब रखवा देते। अब क्या करें, जो उनके पास था वही सब रहते थे इधर उधर। तभी जमाने में वृंदावन का तो हाल बहुत ही, हाँ था कोई गेस्ट हाउस, ये तो इस्कन जाकर के अभी हाईटेक सिटी बन गया, नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही था, धर्मशाला में भी लोग नहीं जाते थे, एक ऐसी घाट के पास वही था वर्ल्ड वृंदावन, तो वहीं प्रभुपाद जी रखवाते थे उनको, तो लोग रुकते थे और ना कोई था, आए क्या करेंगे घूमा कर, तो बोलते कि राधा रमण जाते देखने के लिए, लोग प्रसिद्ध था, लोग बोलते हैं स्वयं विग्रह, बाकी सब तो विग्रह चले गए, ये विग्रह हैं। तो एक बड़े भक्तिभाव का सेक्रेटरी इनिशिएटेड डिवोटी थे, विदेशी थे मेरे प्यार महत्ता, तो उनका राधारमण के प्रति लगाव जब खूब सुना प्रभुपाद जी राधारमण की महिमा सबके सुने, तो डेली जाता था उन्होंने, जबकि राधारमण के मंदिर थोड़ा लेट में खुलता था, बांके बाहरी राधारमण से बड़े बड़े थोड़ा लेट में खुलता है उनका, बहुत लेट में खुलता है, तो फिर भी जाता था उन्होंने, जाकर घंटों खड़ा होता जो पुजारी आरती करता था, देखता था राधारमण बड़े सुंदर है देखने के, और देखता था खड़े होकर के, और पुजारी देखता कि हट्टा कट्टा विदेशी आया है, बिल्कुल चकाचक देवता जैसा दिखता है, जब विदेशी भक्त और धोती कुर्ता पहन करके सेब ढेर करके तिलक लगा देते हैं, लगता है कि अभी अभी ताज़ा देवता डाउनलोड हुआ है अब यही से दिखते हैं बिल्कुल, और वो तो क्या आरती तो राधारमण करता है, इधर दृष्टि पड़ता है उनका, ओ डेली आता है खड़ा तो खूब दिखता है, तो आरती करके आता है उनको आरती देता है, वो तो कोई बल्लिक होते नहीं थे, एक ही यही जाता था, बाकी कोई नहीं जाते थे, अभी भी नहीं कोई जाते हैं, क्योंकि स्कन के वजह से कुछ कुछ मत पे जाते, नहीं तो कोई नहीं जाता था कोई मंदिर में, तो वो आता था आके आरती लेता था, तो उनको बड़ा प्रसन्न होता था, उनको पानी सीखता था थोड़ा, वो कुछ प्रसाद देता था, कोई तो एक ही तो था आरती देखने के लिए, और कोई होता नहीं था, तो देखा कि वो डेली आता था, तो लेकिन वो हिंदी नहीं जानता, वो इंग्लिश नहीं जानता, अब क्या करेंगे, जो भी ठराठोरी में जो बातचीत होता था तो लेकिन कई महीना लगातार जाता था, तो धीरे धीरे आपस में आरती के बाद थोड़ा आकर बातचीत करते दो चार बात इंग्लिश में सीख गया, वो अपने समझने लगे, सांकेतिक भाषा भी समझने लगे, समझ करके वो भी कोशिश करता था मैं उनसे बात करूँगा, इंग्लिश कुछ सीख रहा था, वो भी हिंदी सीख रहा था, सारे दोनों कुछ सीख रहे थे, तो कुछ महीने के बाद में लगातार जाता था वक्त, और तभी वर्षों तक हो चुका था और कृष्ण मुरारा मंदिर बन चुका था, मंदिर अभी बनने वाला ही था, प्रभुपाद हाउस कंस्ट्रक्शन हो चुका था, आपको पता हो कि नहीं, कृष्ण बलराम के मंदिर बनने से पहले प्रभुपाद जी के भवन निर्मित हो चुका था, प्रभुपाद पहले रहकर फिर वो भवन, तो प्रभुपाद जी वहीं लाकर रहने लगे, राधा राधा मंदिर छोड़कर वहाँ रहने लगे, वहाँ रहने लगे तो सारे भक्त लोग तो वही जहाँ ये वहीं चारों तरफ मंडराएंगे मक्खी की तरह, सब जाकर वही कई दिन भर वहीं प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी वृंदावन में रहेंगे, सारे भक्त वहीं जाकर रुकते थे, लेकिन वो जो भक्त था उनका तो वो हमेशा जाता था, वो जाता था जाकर फिर आता था प्रभुपाद जी के पास, अपने रूम में जा करके राधारमण दर्शन कर आता था, तो इतने दिन के बाद तो वो भी थोड़ा पुजारी की बात समझ रहा है, पुजारी को उनको समझ रहा है, वर्षों हो गया, तो उन्होंने एक दिन कहा उनको बुला करके, राधारमण के माला दिया उनको, हाँ आरती दिया प्रसाद दिया, बोला देखो तुम जैसे एकनिष्ठ भक्त हमें देख रहा हूँ, और डेली आता है विदाउट फेल टाइम पर आता है दर्शन करता है, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके ऐसा है, तेरे वजह से मैं भी कुछ सीख गया अभी भाषा, और निश्चित रूप से होकर ऐसे रोजाना आते रहोगे, ऐसे भक्ति भाव से दर्शन करते प्रार्थना करते रहोगे तो राधा रमण आपके प्रार्थना को सुनेंगे, तो आपका भारत में जन्म होगा, फिर अगर प्रार्थना करोगे भारत में फिर ब्राह्मण परिवार में जन्म, फिर अगर प्रार्थना करोगे तो भारत में हमारे गोस्वामी परिवार में जन्म होगा, तब आप फिर राधारमण के ईसा सेवा आरती कर पाओगे, वो 3-5 जन्म के हिस्ट्री बता दिया उनको, इसे करिए इसी प्रार्थना अगर 5 जन्म तक करो तब फिर ऐसे आपने करोगे, ये इतने लंबा कोर्स सुन करके बोला है, इतने बड़े तो हमको सोच भी नहीं सकते, और वो बोला कि अभी तो तुम्हें अच्छे हो, ब्राह्मण तो है नहीं, जेन्यू डालकर आ गया ऐसे डाल दिया, ये सब कुछ नहीं होता, ये शरीर में नहीं हो सकता, आप तो पंचंडाल है मृक्ष है, अभी उसको जेन्यू डाल दें थोड़ी हो जाता है, ये मरोगे भारतीय हो गए फिर ब्राह्मण हो गए फिर गोस्वामी हो गए तब जा करके ब्राह्मण हो गए तब राधा रमण की सेवा कर पाओगे, उनको ये बात बड़ा चोट लगा, बोला प्रभुपाद जी मुझे सेकंड एडमिशन दिए हैं, मैं तो कृष्णवार मंदिर पूजा करने के लिए भी जाता हूँ, प्रभु मुझे ऐसा कहता है, ये 5 जन्म का हिसाब बता दिया, हाँ प्रभुपाद जी ने मुझे ब्राह्मण दिखा दिया, मैं इतने सारे नियम पालन बड़े स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ सब कर रहा हूँ, तो थोड़ा खटका लगा उसको, विदेशी है ना पढ़े लिखे हैं बहुत, माइंड किया कोई बोल नहीं सका इतने, तो जा करके प्रभुपाद जी जब अकेले थे जाके मौका देकर प्रणाम के बोला प्रभुपाद जी से बात पूछना है, विदेशी लोग बड़े स्पष्टवादी होते हैं, और पूछा मतलब क्या, बोला प्रभु आज आपको तो पता है मैं डेली डेली राधा मंडल जाता हूँ ना, जाता है ठीक करता है ऐसा दर्शन करके आज भी कितना गया था। इतने साल हो गए अब तो मैं पुजारी की बात भी समझने लगा, वो भी मुझे समझता है, लेकिन आज पुजारी ने खुश होकर के मुझे आकर माला वगैरह दिया प्रसाद दिया, लेकिन एक बात मुझे कहा न, क्या कहा, खुश होकर के मुझे प्रसाद देकर कहा, बोला तू जैसे एकनिष्ठ होकर के रोजाना आते हैं आता है और इस प्रकार तू आते रहेगा, इस प्रकार आरती दर्शन प्रार्थना करते रहेगा, बोले ये जीव जनी तो डुप्लीकेट तेरा है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, तो मैच है, ऐसे अगर आते रहोगे तो अगले जन्म में राधा रमण की कृपा से तो भारत में जन्म लोगे और फिर इस प्रकार करोगे तो अगले जन्म में तो ब्राह्मण बनोगे, फिर अगर इस प्रकार करते रहोगे अगले जन्म में तो गोस्वामी परिवार में जन्म लोगे, फिर ऐसे राधा रमण की सेवा भी आप कर पाओगे। क्या प्रभुपाद ये जनी बेकार है, ये ब्राह्मण मैंने है ही नहीं, अभी भी मैं चंडाण हूँ, मैं इतने नियम निष्ठा करके सब कर रहा हूँ, ऐसे मुझे ऐसे बता रहा है। प्रभुपाद जी हंसने लगे उनके बात को सुनकर, बोले तुम कुछ नहीं बोला, बोले मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप आ गए, बोले तू कल जाए ना, मैं जाऊँगा ना कल जाकर बताना उसको, जैसे आएगा ना तू बताना, बोले क्या बताऊँ, बोले नोट कर लो क्या बताना, बोले क्या बताऊँ, बोले हे ब्राह्मण देव गोस्वामी जी हमारे गुरु जी ने बताया, बोले मेरा नाम नहीं बताना, बोले ऐसे मैंने सुना है कि अगर आप ऐसे एकनिष्ठ होकर राधा रमण के डेली डेली आरती करोगे तो राधा रमण की कृपा से आप अगले जन्म में इस गोस्वामी परिवार छोड़कर अमेरिका में हमारे मृक्ष परिवार में जन्म होगे, जन्म होकर के फिर इसी संस्था में आओगे, फिर हरे कृष्ण जप कर पाओगे, अगर ऐसा करोगे तो राधा रमण विशेष कृपा हो तो ये बता देना। और वो तो आज इटीज होते हैं हमारे संस्था, वो जाकर बता दे सीधा। वो तो बोला क्या, मैं राधा रमण का जीवन भर आरती करूंगा तो जाकर के मृक्ष परिवार में जन्म लो ना, हाँ तब हरे कृष्ण तो जप नहीं रहा, ऐसा कुछ नियम निष्ठा नहीं, तब तो करोगे राधा रमण का विशेष कृपा होगा तब कर पाओगे, हम क्या करेंगे यहाँ करके, तू अगर ऐसा करोगे तो हमारे जैसे बन। और ये बात बिल्कुल सत्य शास्त्र सिद्धांत है, प्रहलाद महाराज यही बात कहते हैं कि द्वादश गुणयुक्त ब्राह्मण भी कुकुर भोजी चंडाल से भी नीचे, कोई काम का नहीं अगर भगवान के भक्त नहीं निष्ठा, लेकिन उसके बढ़ करके गुण। तो आगे कहते हैं नैवात्मन प्रभुरयम निज लाभ पूर्ण, इस श्लोक में कि हे प्रभु अगर आपके जो स्तुति पूजा सब किया जाता है कि अब इसी से बनते हैं, जैसे ये पिछले श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखे हैं कि कृष्ण की जो उक्ति है भागवत में भागवत गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इस बात को कई तथाकथित पंडित बोलते हैं कि कृष्ण बड़े स्वार्थी, चलो हम मान लेते हैं गीता पीता में है करके भगवान कर, लेकिन ऐसा बात ये टू मच अति, बोले क्यों, बोले ये बोलते सब छोड़कर उनके शरण में जाने के लिए, सेल्फ ओरिएंटेड है, तो अपना बता दो सब छोड़ो, वो कोई कुछ नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, बोले अरे ये किसे ऐसे कैसे कहता है, ये तो ठीक नहीं, इसलिए नॉट जेंटलमैनशिप, ये तो अति स्वार्थ की बात है, बोले इसे महामूर्ख भी ऐसे बात कहते हैं, बोले प्रभुपाद बोलते हैं इसे मूर्खों को नहीं पता है कि भगवान इसलिए कहते हैं कि मेरे शरण में आओ क्योंकि मेरे शरण में मेरे भक्ति पूजा करने से कृष्ण का कुछ नहीं होने वाला है, कृष्ण का जो हुआ है तो निज लाभ पूर्ण, वो अपना आत्मतुष्ट है, उनको कुछ ऐसे मेरिट कुछ खास नहीं मिलने वाला, क्या मिलेगा ना, जो करेगा उन्हीं का ही फायदा होगा, उन्हीं का ही लाभ होगा, वो तो निज लाभ पूर्ण है, वो तो आपने में किसी का सेवा नहीं चाहते, उनको जरूरत ही क्या सेवा, लेकिन जो इस प्रकार उनको सेवा करेगा समर्पण करेगा सारे चीज मन प्राण तो उन्हीं का फायदा होगा। ये घटना भगवान राम ने दिखाए थे प्रैक्टिकली, जब सेतुबंध निर्माण हो रहा था, सेतु निर्माण समय में, सेतु निर्माण होने से पहले विभीषण के शरणागति हो गया था, विभीषण आ गया था, वो आ करके सरेंडर किया, और विभीषण शरण के प्रसंग में विभीषण जब आ गया था सेतु की प्लानिंग चल रहा था, पता नहीं क्या करेंगे सोच रहे थे, विभीषण आया तो विभीषण जो आया था उनका गाड़ी था उससे लंका का नंबर प्लेट तो लगा ही था, क्योंकि वो तो रॉयल गाड़ी था, उनका रावण का भाई था, वो तो महामंत्री था, यहाँ का मिनिस्टर था, तो उनके साथ चार असिस्टेंट भी थे, हाँ, और अपना गाड़ी लेकर आया था उसमें लंका नंबर प्लेट लगा था। वो जब आया तो वो लोग बोले तो एक तो हमारे शत्रु है, लंका के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं, उन्हीं के लोग है, और उनका गाड़ी में लगा भी होगा ना उनका ये माननीय असिस्टेंट प्रधानमंत्री, तो लिखा तो होगा ना होता ना गाड़ी में लगाते ना लगा वीआईपी अपना नाम अपने क्या बोलते हैं उसको डेजिनेशन उस भी लिखा होगा, और असिस्टेंट भी थे उनके चार चरों के साथ, तो उनको देख कर तो 100% श्योर है तो और राक्षस है हमारे शत्रु है और शत्रु के भाई है, और वो पहले दो तीन बार हो चुका है रावण ने डुप्लीकेट अपने गुप्तचर भेज रहा ना, और रूप बदल बदल कर आते हैं, ये क्या ये तो बिना रूप बदले सीधा सीधा आ रहा, क्या भेज लेने के लिए आता है, क्या कारण क्या पता नहीं उनको क्या करे, लेकिन विभीषण ने आए तो राम 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 करते आते थे। तो जब ये बात चर्चा हुआ और सैनिक लोग सब उनको देखे और पूछे ऊपर में, अब अंगद थे, सुग्रीव थे और बड़े बड़े सुजाम्बवान आदि सब बड़े बड़े मंत्री मंडल से चर्चा हुआ, अब भगवान के पास अब बात आया ऐसे ऐसे कैसे क्या किया जाए, भगवान बोले चलो इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ, तो तुरंत इमरजेंसी कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट मंत्रिमंडल को बुलाया गया, जो बड़े बड़े मंत्रिमंडल थे मुख्य मुख्य उनको बुला करके विचार विमर्श किया गया, विचार विमर्श किया, सभी ने अपने अपने मतामत रखे और सभी ने शास्त्र युक्ति न्याय संगत मत दे करके भगवान को कहे कि किसी भी प्रकार से वो शरण योग्य नहीं है, हर प्रकार से बता प्रूव कर दे शरण योग्य नहीं है, अगर ज्यादा से ज्यादा आप कृपालु हम समझ रहे हैं आप बड़े दयालु हो तो उनको नजरबंदी में रखा जाए, लड़ाई होने के बाद अब टेस्टिफाई करेंगे उसको, अगर सही होगा तो ले लेंगे साथ में, नहीं तो नहीं फिर जो करना चाहिए उनको ट्रीटमेंट वही करेंगे, अभी तो उनको रखा जाए बंदी में करके रखा जाए उसको। तो केवल हनुमान जी बोले नहीं आप लोग बोलते हैं लेकिन मेरे मत में तो शरण लेना चाहिए, अच्छा खासा आदमी मैं भी दिखाता हूँ उनको ठीक आदमी, लेकिन बाकी भाई बाकी जितने थे कोई भी सपोर्ट नहीं किए, और हनुमान जूनियर थे, बड़े बड़े जो सुग्रीव आदि राजा जम्बवान आदि महा सीनियर अंगद बड़े बड़े सब को माने नहीं, तो अंत में सारे का मतामत सुनने के बाद वाल्मीकि रामायण बड़े विशेष वर्णन है उसका, तो भगवान राम स्वयं आपने मतामत अंत में बोले आप अगर सभासद वर्ग चाहें तो मैं आप हैं आप मतामत दीजिए, बोले देखो आप ये मानते कि नहीं कि मैं भीटो पावर करके मेरे मत में दे सकता हूँ, आप कर सकते हैं हम मानते हैं, ये तो हमको बुलाए आपने कृपा करके, बिना बुलाए यू कैन टेक योर डिसीजन टू, आप अपना डिसीजन ले सकते थे लेकिन आप बुलाए, बुलाया तो हम सोचते हैं कि हम मेजोरिटी जो डिसीजन दिए उसको आप मानेंगे, यही हम आशा भी करते हैं मेजोरिटी से हम ही कहें, तो भगवान सीधा सीधा कहे तो मेरे मत में आप लोग जो कहे बहुत अच्छा किए, मेरे प्रति आपके बहुत सद्भावना है, मेरे प्रति आपका प्रेम है बंधुत्व है, इसलिए मेरे हित के लिए आपने बहुत शास्त्र न्याय युक्ति सम्मत बात कहे, मैं इसको मानता हूँ आपको सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मेरा मतामत है इसी क्षण उसको लेकर आओ, जाओ लेकर आओ, डोंट लेट कोई लेट मत करो, इसी क्षण लाओ मैं इसी क्षण उसको शरण मिलूंगा। सारे बोले जब का आपको यही करना था मैं मीटिंग को बुला ये टाइम क्यों खराब करना था, आपको यही करना था तो आप तो पहले कर सकते थे, अरे अब बुला करके बाकायदा बदनाम सिस्टमेटिकली करा कर फिर क्यों करा, बुलाए बैठा कर खूब सुने खूब सम्मान दिए और बायकट कर दिए सीधा, एक भी नहीं सुने, दिस इज वेरी बैड। तो भगवान ने घोषणा की शरण दे दूंगा, मतलब तुरंत लेकर आओ, सारे बड़े बड़े जूतपति इविन मित्र भानर राज सुग्रीव भी मन बहुत खराब है, अभियान बोले बोले आप टाइम खराब कर रहे, ये हजारों सैकड़ों बांदर लेकर आया मरवा देगा, तो इनका बात में फंस करके मैं बड़ा गलत डिसीजन ले लिया, अरे देखो ये सरासरे शत्रु को शत्रु के भाई अभी आया है बिल्कुल डेजिन से, उनका नंबर प्लेट है ये, उनको ऐसे लेता है साथ में, पता नहीं क्या भरना पड़ेगा मरवा देगा बेचारे, मैं तो चाहता था हम बड़ा मंत्र कुछ साथ में लड़ाई कर ले, लेकिन वो तो ऐसे ही मरवा, बड़े गलत हो गया डिसीजन, मन में सोचे बोल नहीं रहते, बोले ये छोड़ के चला जाना युद्ध अभी भी छोड़ के चला जाना चाहिए, मन में सोच रहे थे, तो अभिमान लग रहा था उनको, बाकी सभी को लग रहा था उनको थोड़ा ज़्यादा क्योंकि लीडर थे सबके, बोले मेरे वजह से सारे वानर सेना समाप्त हो जाएंगे सब मर जाएंगे, और बेचारे के पास तो कुछ है ही नहीं, ऐसे सैनिक है हमारे जीरो एक्सपेंस वाले, कोई खर्चा नहीं सैनिकों की, ना कोई अकोमोडेशन का है क्योंकि जंगल में रहने वाले फ्लैट फ्लैट चाहिए नहीं, अरे यूनिफॉर्म तक नहीं चाहिए उनको, कपड़ा पहनते नहीं, सारे नंगे धड़ भाई, नो अकोमोडेशन नो प्रसादम, जंगल भोज पेड़ में तोड़ करके फ्रेश खाएंगे, किचन में नहीं जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए उनको, ना ड्रेस और अमिनेशन भी नहीं चाहिए, अमिनेशन का चलाना आता नहीं, कोई ट्रेंड है नहीं, तो उनको तो भाई दांत और पत्थर, पत्थर उठा फेंकेंगे, दांत दिखाएंगे, काट खाएंगे, वही उनका पास है, कोई अस्त्र शस्त्र बंदूक चलाने के लिए ऐसे ही सोल्जर लेकर में आया। और रावण दी विश्व के पूरे ब्रह्मांड से टप नंबर वन त्रिलोक विजयी सैन्य है, उनके सामने सारे मारवा डालेगा, मेरे वानर जाति नष्ट हो जाएगा, ये क्या इसे कर रहे हैं, अमृता कहा नहीं मन में इसे बड़े, लेकिन भगवान तो अंतर्जामी है, सबका मुंह देखे हनुमान जी का मृत्यु, बाकी सारे तो बिल्कुल मुंह लटक दिया था, सुग्रीव जी तो बिल्कुल अब क्या कहें बोल नहीं सकते थे, तो भगवान विभीषण आने आते सुग्रीव बोले सुग्रीव जी लगता है कि अब थोड़ा चिंतित है, प्रभु लगता तो है आपने ऐसा किया ना, आप क्या जाना चाहते हैं प्रभु, आप ऐसा अगर होगा तो ये बानर जाति मर जाएंगे, हम तो युद्ध के लिए आते, ये क्या होता है, लड़ाई शुरू नहीं हुआ अभी, समुद्र पार नहीं किए, इसे इसे कांड हो रहा है, तो भगवान बोले देखो जब जाना चाहता है अभिमान करके छिप करके जाने के लिए विचार क्यों करते हैं, ससम्मान में मैं विदा करूंगा, अब जाओ ना सबको लेकर के जाओ, सारे बानर सेना को लेकर के सम्मान के साथ मैं जाकर वो छोड़कर के आऊंगा, किसी लता आधा तक जाकर छोड़ता हूँ, जाओ जाना चाहिए। बोले प्रभु ऐसे क्यों कहते हैं, आप तो मैं जानता हूँ अंतर जाम, मेरे मन की बात सब समझ जान के, लेकिन मैं मन में ऐसे सोच ही रहा हूँ, ये तो मेरा गलत है क्या, नहीं गलत नहीं, आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, मैं बाध्य नहीं करता हूँ, आपको मन में दुख नहीं देना चाहता हूँ, आप जाना चाहते हैं, लेकिन आप फिर बोले मैं तो करूंगा लड़ाई, ये शत्रु को साथ में लेकर के, ये कैसे आप सोचते हैं, हम आपके मित्र बने, सब कुछ समर्पण किए, और सारे वानर सना बिचारे इस हाल में लेकर करोड़ों संख्या में लेकर आए, जी जान लगाकर आपके साथ लड़ करके आपका काम करने के लिए आए, वो आप ऐसे करते हैं, हमारा एक भी नहीं सुनते हैं और इस प्रकार करते हैं, तो प्रभु हमें दुख लगता है, इसीलिए हम ऐसे सोचते हैं। बोले दुख करने की बात नहीं, मेरा स्वभाव मेरा है, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा है, हम दोनों मिले थे लेकिन आप स्वभाव बदला नहीं, मेरे स्वभाव तो बदल गया नहीं, ना प्रभु ये स्वभाव की बात नहीं है जी, लड़ाई की बात है, रावण जैसे महाशत्रु उनका सामना करना है, और सीता जी को उद्धार करना है, इसी हम कसम खाए इसी काम के लिए। तो राम बोले हे हरि गणेश्वर, हे बानर युद्धपति सुग्रीव, आप अगर ये सोच रहे हो कि आप सब बानर सेना मलुक सेना मिल करके मेरी मदद करके मुझे जिताएंगे, सीता उद्धार करवाएंगे, तो ये आपका गलत सोचना है, मुझे आपका कोई हेल्प नहीं चाहिए। और सीरियस हो गए सारे, व्हाट नहीं चाहिए, ना नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का एक भी सहायता नहीं चाहिए। बोले आकर मित्रता कौन के, आप ही के ना पहले से आकर, बंधुत्व आपके, बोले आप ही बंधुत्व क्या, आपके भला है कि नहीं, तू डर के मारे घर से बाहर निकल रहा था, स्त्री राज्य सब गए थे, इस प्रकार के मर रहा था, तो आपको बंधुता के आपको दिला दिया, मुझे कोई चिंता नहीं, अब मैं अगर चाहूंगा तब भगवान आपने थोड़ी सी समय भगवत्ता दिखाए, अगर मैं चाहूंगा खोल करके गंभीर स्वर से कहे हे सुग्रीव और जितने सारे बानर सना सब सुन लो, अगर मैं इच्छा करूं इसी क्षण में यहीं पे विभीषण क्या केवल अंगुल्याग्र अपना हाथ उठाकर भगवान राम के इस अंगुल्याग्र में पूरे ब्रह्मांड में जितने दानव राक्षस आदि है वहीं पे खड़े खड़े सबको मार दूंगा, हाँ यहीं पे, बोले स्थूल रूप में सबका जो सूक्ष्म रूप में वही यहीं से खत्म कर दूंगा, यहीं से डिलीट बटन दबाऊंगा अंगूठी में और सब डिलीट हो जाएंगे, कुछ करना नहीं, ये है मेरे पास टेक्नोलॉजी, अगर यहीं बैठे बैठे यही केवल एक अंगूठी में डिलीट बटन दबा दूं, डिलीट के सारे असुर संपदा असुरी शक्ति नाश हो जाए, तुरंत नाश हो जाएगा, यहीं पर डिलीट कर सकता हूं, आप लोगों का क्या जरूरी है, जब मारना असुर को मारना हो तो वहीं पे खड़े खड़े बैठे मार सकते, एक अंगुली का काम है। और जहां तक सीता की लाने की बात आप कहते हैं, अगर मैं यहीं पर इच्छा करूं, रावण विभीषण आने से पहले पुष्पक विमान में सीता जी को सम्मान बैठा कर लाकर प्रभु जी माफ कीजिए लीजिए ये देख दे जा, आप चाहते ये भी हो सकता। तो और सीरियस हो गए हो, बोले प्रभु अगर ऐसा है तब ये हम करोड़ों को ला करके ये किस किंदा से ये समुद्र किनारे तक बिचारे भागे दौड़े आए, अब जी जान लगा कर ये सब कर रहे हैं, ये सब प्रोजेक्ट ये कहाँ कहाँ के ले रहे हैं, कर रहे हैं सब काम समुद्र। बोले ये मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, पर किस लिए? सभी आप लोग के भलाई के लिए। आप मूर्ख जानवर है, आपका कल्याण कब होगा? अगर हरि के काम में आप लग जाओगे, आपके मन बुद्धि इंद्रियां शरीर अगर मेरे कर्म में लग जाएगा तो आपका ही कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। मेरा क्या उद्धार आप करोगे? आप मेरे उद्धार करोगे, मेरे काम करोगे। ये रामायण में कहे, भगवद गीता में अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन बोला मैं आपकी विभूति थोड़ा पावर देखना चाहता हूँ, चलो बोलता हूँ तो बताने। बोले मेरे पावर तो मैं ही पूरा नहीं बता सकता हूँ, थोड़ी थोड़ी बताता हूँ सुन लो। तो विभूति बताने लगे, बताते बताते 30-40 लोग बोलने के बाद बोले अर्जुन और क्या ज़्यादा बताऊँ, तेरा टाइम भी खराब होता तो क्या सुनेगा, लड़ाई करना है। अथवा बहुना तेना किंग ज्ञातेना तब अर्जुन विष्ठभ्याहम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थित जगत। विष्णुभ्राम संपूर्ण चराचर चर अचर जितने संपूर्ण ब्रह्मांड में जो जो कुछ सृष्टि है, ये सारे सृष्टि मेरे अंगुल्याग्र इसे कनिष्ठ अंगुली के अंगुली का अग्र भाग बोले इसी में सब टिके हुए हैं, बाकी तो मेरे में कुछ नहीं, मैं इसी में टिके हुए संपूर्ण चराचर सृष्टि। विष्णुभ्याहम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थित जगत, सारे जगत एक अंश में टिका हुआ है, तुम मुझे क्या जानोगे, वो इसी के अंदर तू भी हो। तो यही से भगवान कभी कभी दिखाते हैं, तो हम लोग तो समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते भगवान की महानता उनके भगवत्ता। तो इसलिए प्रहलाद महाराज आज इस श्लोक कहते हैं, इसलिए नैवात्मनं प्रभु अयं अयं प्रभु हाथ दिखा करते, ये जो प्रभु मेरे सामने विराजमान है नरसिंह रूप, ये ब्रह्मादि सारे स्तुति कर रहे हैं इतने बड़े बड़े सब, बोले उनको क्या स्तुति करेंगे, वो प्रसन्न कैसे होंगे, जरूरत नहीं, क्योंकि वो निजलाभ तुष्ट, वो अपने आप में ही ऐसे संतुष्ट है कि दूसरे किसी का इनपुट उनको चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। अयं प्रभु निजलाभ तुष्ट। तो और क्या, तो फिर ये जो इतने बड़े बड़े सम्मान स्तुति वेद इसमें पढ़कर जो किया जाता है, बोले वो तो इसलिए इसको स्वीकार करते हैं, प्रभु स्वीकार करते हैं, स्वीकार इसलिए करते हैं क्योंकि उनका एक विशेष स्वभाव है, गुण है। मतलब क्या, न पूर्ण मानंग नादि विदुष, बोलते एक तो दूसरे अविदुष जो जो अभक्त हैं ज्ञानी नहीं है वो विचार जानते, उनके से तो कभी स्तुति स्वीकार करते ही नहीं, लेकिन जो जानकार व्यक्ति है भगवत भक्त है वो भी जो स्तुति पूजा सम्मान आदि करते हैं उनको भी उनको जरूरत नहीं, वो इसलिए करते हैं कि उन्हीं के कल्याण के लिए, उन्हीं के कल्याण के लिए करते हैं, कैसे उनका कल्याण होगा तो उदाहरण के लिए बताते हैं। जैसे आप आपके शरीर को सजाते हैं, मुख में चंदन चर्चित करते हैं, माला पहनते हैं, बड़े चोटी बांधते हैं, मुकुट पहनते हैं, तिलक चिता करते हैं, और जाकर आईना में देखते हैं, जो प्रतिबिंब देखेगा वो कैसे दिखाई पड़ेगा, सज्जित दिखाई पड़ेगा, श्रृंगार दिखाई पड़ेगा उसके अंदर। ठीक इसी प्रकार जो मूल बिंब अगर मूल बिंब अगर श्रृंगार किया जाए, सज्जित किया जाए, तो प्रतिबिंब भी ऑटोमेटिक सज्जित दिखाई पड़ेगा। तो मूल बिंब है अयम प्रभु, ये प्रभु ही मूल बिंब है, हम सब प्रतिबिंब है, हम सब प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। बोले मूल बिंब को हम अगर सम्मान देंगे, पूजा करेंगे, सजाएंगे, खिलाएंगे, तो मूल बिंब का कुछ नहीं होगा, प्रतिबिंब भी अपने आप सज जाएगा, सम्मानित होगा, खाएगा, तुष्टि होगा। यही इसीलिए प्रभु स्वीकार करते हैं हमारे लिए, उनके लिए कि तो निज लाभ तुष्टम, वो तो अपने आप तुष्ट है, उनसे हम लोग के थर्ड क्लास से क्या करें, कोई मतलब नहीं, हम जिस लोग से कोई सहायता के किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी तो वेता यहां तक कहते हैं लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सिव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं वजाम। जो सहस्र सहस्रो भाग्य की देवी लक्ष्मी जिनको सेवा करने के लिए लाइन में खड़े हैं, वो चांस नहीं मिला अभी तक, कब आएगा हमारे बारी, कब हम भी कोई थोड़ा सेवा करने नहीं मिला। तो इसमें हम लोग कौन सा गाय का गोबर है भगवान की सेवा करने चलेंगे, क्या योग्यता है हमारा, कुछ ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम करते हैं उसमें केवल हमारा ही फायदा है, हमारा ही कल्याण है। भगवान तो ऑटोमेटिक अपने से ही तुष्ट हैं। जब हम अपना उद्धार सुधार कल्याण चाहते हैं तो केवल एक ही उपाय है, इस मूल बिंब को सम्मान करो, सजाओ, उनके लिए करो तो अपने आप को ऑटोमेटिक मिलेगा। अगर उनको ना करके अगर प्रतिबिंब को आपने हम बोले हम सजाएंगे तो प्रतिबिंब में अब तिलक लगाओ तो आपको देखा जाएगा। जैसे कभी कभी हम तिलक करते हैं, ओ भूल गए एक बिंदी, ओ ऐना देखा अरे मिस कर गया जल्दी से, तो चंदन लेकर के वो जहाँ दिखता ना प्रतिशवि ऐना में लगाएंगे, कितने भी लगाओ दिखता नहीं, और लगाओ वो शीशा भी तोड़ दो, हाथ भी कट जाए तब भी ना लगे, तो कैसे लगेगा प्रतिबिंब लगाने से लगेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार जब तक मूल बिंब जो मूल पदार्थ है, जब भगवान में हम सम्मान और जो भी कुछ नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ हम हमारे लिए चाहते हैं वो सारे प्रभु को अर्पण कर देना चाहिए, मन वचन जो भी कुछ है, चेष्टा शारीरिक चेष्टाएं सब कुछ और भगवान को अर्पित कर दे, भगवान के अलावा और किसी को नहीं, तब ऑटोमेटिक हमको सब प्राप्त होगा, सभी हमको प्राप्त हो। आजकल संसार में सच पूछो तो चाहे भक्त हो अभक्त, तिलक लगाओ ना लगाओ जो भी करो, सारे कर्मी भक्त ले देकर सभी का प्रोजेक्ट तो एक ही है, सम हाउ और अदर हाउ टू बिकम हैप्पी है ना है। इसी के लिए जावतीय प्रकार के चेष्टा कार्य सब करते हैं इसी लक्ष्य में। लेकिन वो हाथ में नहीं लगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ओ बहुत बैफुल हो, बोले रेल लगा नहीं तो फिर क्या किए, बोले चलो ये सुख भुख नहीं होगा, फिर क्या करें ना, प्रयास करते हैं दुख से बच जाए, सुख ना हो, दुख निवृत्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति तो होता नहीं। अब दुख निवृत्ति हो जाना को ही सुख मानने बैठे, बोले ये जो दुख मेरे से बच जाऊं तो वही सुख मान लू और क्या करें। लेकिन यद्यपि ये दोनों अलग अलग चीज है, दुख निवृत्ति सुख नहीं है, अरे दुख की बंद क्या सुख थोड़ी बात, सुख कुछ अलग पदार्थ है। लेकिन हमको सुख की परिभाषा ही नहीं पता, सुख का कभी टेस्ट ही नहीं किया, तो सुख का बारे जानते नहीं तो क्या करें। तो आकाश कुसुम की तरह आशा करके छोड़ दियो सुख ने, तो केवल जिसको हम एक्सपीरियंस्ड है किसके बारे में एक्सपीरियंस है, दुख के बारे में, हमेशा उसी के पल्ले पड़ता है। तो दुख के बारे में जो खूब अभिज्ञता है बोलते हैं दुख से बच जाऊं, इसी को सुख मान लिया बस, तो इसी के चक्कर दुख भी कहाँ छूटता है, वो भी नहीं छूटता। बोले जो इसी चक्कर में तू पड़े है, तो ये सारे इंद्रिय की चेष्टा मानसिक चिंतन वाणी काय मन वाक्य में जो इसी पे पड़ा है, इसी को तू चेंज कर दो। कुछ छोड़ना नहीं है, केवल मोड़ना है, केवल मोड़ना है। जो स्वार्थ के प्रति आपने प्रति जो कर रहा है और आपनों की प्रति जो कर रहा है, वो आपनों से और आपनों से अपना से अपना से और आपनों से हटा करके सीधा गोविंद के प्रति कर दो, माधव के प्रति कर दो, दैट्स इट। केवल इतना ही करो, फिर देखो आपने आपको तुरंत ऑटोमेटिक सप्लाई आता है। जो कुछ सुख चाहता है, मान चाहता है, पूजा चाहता है, जो चाहता है आपने आप मिलते जाता है। जैसे वहां प्लग इन किया लगाया अपना मिला, इसलिए तदर्पितम, इसलिए बोलते हैं यज्जनो भगवितं विदिधित नाम। जो उनको अर्पित करके उनके प्रति करंट होकर करता है तो ऑटोमेटिक वो खुद ही सूझ जाता है यथा मुखश्री। तो ये सिद्धांत प्रहलाद महाराज सिखाते हैं कि इसी प्रकार जो ब्रह्मा आदि आकर स्तुति कर रहे हैं, हम भी स्तुति कर रहे हैं, ये भगवान के कल भलाई के लिए नहीं, भगवान खुश हो जाएंगे, हम ही खुश हो जाएंगे, ये हमारे लिए है। भगवान सिंह देव क्या खुश होंगे, उनको मुझे कुछ नहीं, हमारे भले हमारा कल्याण होगा इसके लिए। हरे कृष्ण।
संध्या के समय महाराज जी का था।